नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। एक लेख में उसने भारत की शक्ति को भी माना है और पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा है। लेख में जोर देकर कहा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखता है, वो विकास के प्रति ज्यादा सक्रिय हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में लिखा गया है कि भारत अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसका भारत वाला नैरेटिव ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है, वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा है। लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत अब हर कीमत पर गुलामी वाली मानसिकता से मुक्त होना चाहता है, वो पूरी दुनिया के मेंटर बनना चाहता है, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के मुस्लिम चेहरे और वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने राम मंदिर निर्माण की वकालत की है। सितंबर में अपनी एंजियोप्लास्टी के बाद पहली बार दिल्ली आए हुसैन ने मीडिया कर्मियों और कुछ पार्टी नेताओं को आमंत्रित किया और उन्हें राम मंदिर की एक लघु प्रतिकृति उपहार में दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लगभग 100 ऐसी प्रतिकृतियों की व्यवस्था की थी ताकि मंदिर के बारे में सकारात्मक संदेश फैलाया जा सके। उन्होंने अपने मेहमानों को केवल शाकाहारी भोजन परोसा और राम मंदिर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करने वाले मुस्लिम समुदाय को भड़काने के प्रयासों के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी आलोचना की। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले बीजेपी कार्यकर्ता देश भर के सभी मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाएंगे। ये अभियान 14 से 22 जनवरी के बीच चलाया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद अस्पताल में भर्ती हैं। उर्फी ने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और कुछ देर बाद डिलीट कर दी। तस्वीर में उर्फी ने अस्पताल का ब्लू गाउन पहना है और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा है। उर्फी की हालत देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी बीमार हैं। उनके फैंस चिंतित हो गए हैं, वहीं उन्हें ट्रोल करने वालों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उर्फी ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा था, नए साल के साथ बैंग। कुछ ही देर में उर्फी की पोस्ट पर कमेंट्स की लाइन लग गई। संभावना सेठ ने लिखा, क्या हो गया। एक फैन ने लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ। एक ने लिखा, 2024 आपके लिए अच्छा रहे, जल्दी ठीक हो जाओ। वहीं कुछ को ये भी उर्फी का पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। एक यूज़र ने लिखा, मैं कंफ्यूज हूँ, उर्फी सच में अस्पताल में भर्ती है या हमेशा की तरह, ये भी उनका कोई नया आउटफिट आइडिया है। जैसे जैसे उर्फी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनके ट्रोल करने वाले अजीबो गरीब कॉमेंट्स कर रहे हैं। न्यू ईयर पर उर्फी हमेशा की तरह रिवीलिंग ड्रेस में नजर आई थी। अब यूजर्स का कहना है कि अगर ठंड में सही कपड़े पहने होते तो बीमार ना पड़ती। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के दो दलित किसानों को जारी समन के खिलाफ आक्रोश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले को बंद करने का फैसला किया है। 5 जुलाई 2023 को 72 वर्षीय कृषक और उनके 67 वर्षीय भाई को समन जारी किया गया था, लेकिन अब मामला बंद कर दिया गया है। इस फैसले का विरोध राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी कर रही है। एस कन्नैयन और उनके भाई एस कृष्णन ने अपने खेत के चारों ओर अनधिकृत बिजली की बाड़ लगाई थी। इसके कारण दो भारतीय बायसन की मौत हो गई थी। वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 2, 16, 2, 36 और धारा 51(1) के साथ धारा 9 के तहत 2017 में FIR दर्ज की गई थी। एक ट्रायल कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को किसान कृष्णन और कन्नैयन दोनों को बरी कर दिया था। हालांकि ईडी ने बरी होने के बाद भी FIR का संज्ञान लिया और घटना के संबंध में तमिलनाडु वन विभाग से एक पत्र के आधार पर मार्च 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। विवाद तब खड़ा हुआ जब 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया 6 महीने पुराना समन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से सामने आया। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों और एक्टिविस्ट ने ईडी द्वारा समन और ECIR दोनों में से दो किसानों की जाति बताने पर विशेष आपत्ति जताई, जो एक FIR के बराबर है। हालांकि ईडी ने जाति को एक टाइपो बताया था, लेकिन विरोध बढ़ता रहा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।